फिर आगे कुछ और माशरती बुराइयों का तस्करा है। वल्लाती यातीन अल्फाहिशत मिन निसाइकुम, तुम्हारी औरतों में से जो बेहयाई के काम करें, इन पर अपने में से 4 गवाह तलब करो। अगर वो गवाही दें तो इन औरतों को घरों में कैद रखो यहाँ तक कि मौत इनकी उम्रें पूरी कर दे, या अल्लाह ताला इनके लिए कोई और रास्ता निकाल दे। तुम में से जो दो अफराद ऐसा काम करें यानी सिना, इन्हें ईजा दो। अगर वो तौबा और इस्लाह करें तो इनसे मुंह फेर लो। बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। इन्नमत्तौबतु अल्लाह ताला सिर्फ इन्हीं लोगों की तौबा कबूल करता है जो बवजह नादानी कोई बुराई कर गुजरे, फिर जल्द इससे बास आ जाएं और तौबा करें। अल्लाह ताला भी इनकी तौबा कबूल फरमाता है, और अल्लाह ताला बड़े इल्म और हिकमत वाला है। वलैसत तौबतु लिल्लज़ीन यअमलून सय्यिआत, इनकी तौबा नहीं जो बुराइयां करते चले जाएं यहाँ तक कि जब इनमें से किसी एक के पास मौत आ जाए तो कह दे कि मैंने अब तौबा की, और इनकी तौबा भी कबूल नहीं जो कुफर पर ही मर जाए। यही लोग हैं जिनके लिए हमने अलमनाक अजाब तैयार कर रखा है। ये थी आयत नंबर 15 से 18, 15 to 18। इनका उनवान क्या है, तौबा क्या है, पहले ये लिखिए। आप एक क्वेश्चन मार्क डालें, फिर उसके नीचे इसका जवाब लिखेंगे, घर का भटका दोबारा वापस आ जाए, ये है तौबा। अपने लफ्जों में आप कह सकते हैं कि तौबा ये है कि एक बंदा नदामत की वजह से, शर्मिंदगी की वजह से अपने रब से दूर हुआ, उसने अपने रब को नाराज किया, और अब उसको एहसास हो गया कि मैंने दुरुस्त नहीं किया, और वो आके रब को कहता है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। जब हम कहते हैं तौबा इस्तगफार, तो इसका मतलब क्या होता है कि अल्लाह तू मेरे पिछले गुनाहों को माफ कर दे और आइंदा मुझे गुनाहों से बचा ले। हम अपनी तौबा को देखें, हम कितनी दफा ऐसी तौबा करते हैं। इन आयात में तौबा का बड़ा खूबसूरत नजरिया है। तीन किस्म के लोगों का तस्करा है। एक वो है कि जो गुनाह हो जाता है उनसे भूल चूक के साथ, लेकिन जो ही एहसास हुआ फौरन पलट आए, फौरन उस बच्चे की तरह के जिसने गलत काम किया और फौरन उसके बाद माँ के पास आके आंखें झुका के खड़ा हो गया और रोने लगा। माँ को उस चीज़ के खराब होने का गम कम होगा, उस बच्चे की मोहब्बत ज्यादा माँ के सीने में उमड़ेगी, वो उसको फौरन सीने से लगा के चिमटाएगी कि मेरे बच्चे क्यों रोता है, कोई बात नहीं मैं इसको साफ कर देती हूँ, कोई बात नहीं अब टूट गया आइंदा ना करना। ऐसे बंदे जो गुनाह करने के बाद फौरन अपने रब की अदालत में खड़े हो जाएं और कहें कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, फिर अल्लाह भी उनको माफ कर देता है। लेकिन वो बच्चा एक तो काम गलत करे और ऊपर जाके अकड़े, हाँ करूँगा क्यों ना करूँ, मेरी मर्जी, क्यों यहाँ रखा था, तो फिर माँ को गुस्सा आएगा। इसी तरह वो लोग जो गुनाहों के बाद उसको लॉजिक्स पेश करें, जो अपने गुनाहों को जस्टिफाई करें, गुनाह करे और ना डरे, ऐसे बंदे की पकड़ होगी। एक जुमला लिख सके तो नोट कीजिएगा कि बंदा गुनाह करे और रब से डरे, अल्लाह ऐसे बंदे को माफ कर देगा। जो गुनाह करे और अकड़े, ऐसे लोगों के लिए फिर अल्लाह ताला ने अपनी पकड़ रखी है। और कुछ लोग तो मौत के फरिश्ते को देख के तौबा करने लगते हैं, और कुछ तो ऐसे बदबख्त हैं कि मौत के फरिश्ते को देख के भी उनके दिल नहीं पिघलते। पहली मिसाल फिरौन की थी और दूसरी मिसाल अबू जहल की है। हमारे लिए मामला क्या है कि अपने गुनाहों को फौरन पाक करें। अगर आप गुनाह को एक धब्बे से तशबीह दे लें तो बात बहुत अच्छी समझ आती है। आप सबके सामने सफेद चादरें बिछी हुई हैं, हो सकता है पढ़ते पढ़ते बेदेहानी में आपका पेन खुला रह जाए और इसके ऊपर एक स्टेन लग जाए। आप में से बाशऊर कोई भी इंसान अगर मौका हो तो फौरन उसको धोने की कोशिश करेगा, क्योंकि सफेद चादरें खराब ना हो जाए। आप देखेंगे सिर्फ पानी में डालते ही वो चादर साफ हो जाएगी, और कुछ कहें कि नहीं अभी नहीं, यहाँ हम उठ नहीं सकते, इजाजत नहीं, इस क्लास के बाद धो लूंगी। आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद जब उसको धोएंगे तो फिर आप उसको पानी के साथ साबुन भी लगाना पड़ेगा। और अगर कोई गफलत के मारे चला ही जाए घर के, देखेंगे हमारी कौन सी ड्यूटी है, और फिर मैनेजमेंट वालों की जब नजर पड़े फिर वो उसको धोएंगे तो फिर वो सिर्फ साबुन से भी नहीं जाएगी, फिर उसमें कुछ ब्लीच भी डालना पड़ेगा, और कभी कभी तो ब्लीच के साथ फिर भट्टी में पकाना भी पड़ता है। बिल्कुल यही कैफियत हमारे गुनाहों की है। जब गुनाह लगा, धब्बा है, उसको फौरन धो लो। नदामत, शर्मिंदगी, आप देखिए आप किसी इंसान का भी दिल दुखाते हैं ना, हो सकता है इंसान है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। आप देखिए बच्चे माँ को कितनी दफा दिन में सताते हैं, शौहर कितना सताते हैं, मुमकिन है, लेकिन फौरन आ जाइए। यकीन करें जिसको आपसे मोहब्बत है वो दूसरा लफ्ज नहीं पूछेगा। एक दफा आपको शैतान अगर इस जंगल से निकाल देना कि मैं छोटा ना हो जाऊं, आप फौरन पलट आएंगे। जब बंदे बंदों को फौरन माफ कर देते हैं तो अल्लाह की जात तो 70 मुंह से प्यार करने वाली, वो अलगफूर के साथ साथ अलगफ़ार भी है, वह शकूर भी है, वो क्यों माफ नहीं करेगा। लेकिन अगर हम अपने गुनाहों को खुद माफ़ नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह ज़िंदगी में मुश्किलात लाता है, फिर इस तरह मौत की सख्तियों पे उन गुनाहों को धोता है। कुछ गुनाह जो है वो कब्र के अजाब से धुलते हैं, कुछ गुनाह जो है वो मैदान मख्शर की सख्तियों से धुलते हैं, कुछ फिर पुल सरात पे और कुछ जहन्नुम में डाल के। इस मौजू पे हमारा एक लेक्चर बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, के गुनाहों के मराहल यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल में अल्हम्दुलिल्लाह इस पे बहुत डिटेल से बात हुई है कि अपने दाग खुद ही धो लो, अपने जख्मों की पस खुद ही निकाल लो, वरना कल जब रब ने निकाल ली तो पकड़े जाओगे। खास तौर पे यहाँ जो बात हो रही है इन आयतों के तनाजर से, जिना, अडल्ट्री और फॉर्निकेशन और लेस्बियंस और इसी के साथ साथ होमोसेक्सुअलिटी की बात है। इन आयत में जिना की वो सारी किस्में जमा कर दी गई जो आज के दौर में आपको खुलेआम दिखेंगी। कभी मर्द मर्द से जिना करता है, कभी औरत औरत से जिना करती है, कभी औरत मर्द से करता है, कभी शोहर अपनी बीवी के साथ कौम लूतियत करता है। इन सारे गुनाहों की बात करने के बाद तौबा की बात दिला दी कि जब इंसान को एहसास हो जाए कि मैंने जो काम किया असल में मैंने दुरुस्त नहीं किया तो अल्लाह ताला भी उसको माफ कर देता है। इन मसाइल पे ज्यादा बात सूरत नूर में जाके होगी, यहाँ खास तौर पे इन आयतों का टॉपिक तौबा था। आगे देखते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लुलकुम, ए ईमान वालों तुम्हें हलाल नहीं कि जबरदस्ती औरतों को विरसे में ले बैठो, इन्हें इसलिए रोक ना रखो कि जो तुमने इनको दिया है उसमें से कुछ ले लो। हाँ ये और बात है कि वो कोई खुली बुराई और बेहयाई करें, इनके साथ अच्छे तरीके से गुजारा करो, गो तुम इन्हें ना पसंद करो, लेकिन बहुत मुमकिन है कि जब तुम किसी चीज को बुरा जानो और अल्लाह तआला इसमें बहुत भलाई रख दे। वह इन औरत तुम इस्तिब्दाल ज़ौजिन मकान ज़ौजिन, और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी करना ही चाहो और इनमें से किसी को तुमने खजाने का खजाना दे रखा हो तो भी इसमें से कुछ न लो, क्या तुम इसे नाहक और खुला गुनाह होते हुए भी लोगे? तुम इसे कैसे लोगे? हालांकि तुम एक दूसरे से मिल चुके हो और इन औरतों से तुमने मजबूत अहदों पे मान ले रखा है, और इन औरतों से निकाह ना करो जिनसे तुम्हारे बापों ने निकाह किया, हाँ मगर जो हो चुका। ये बेहयाई का काम है और बुग़्ज़ का सबब भी है और बड़ी बुरी राह है। ये थी आयत नंबर 19 से 22, 19 to 22। इनका उनवान है माजी की तलखियों को भुलाकर नई जिंदगी शुरू करो। बहुत ही खूबसूरत आयतें हैं। शुरू में तो बात थी मरने वाले की बीवी को वारिस बनाने की। दौरे जाहिलियत का एक दस्तूर था कि जब कोई मर जाता तो जिस तरह उसका माल दूसरे लोग आपस में बांट लेते और जिसका दिल चाहता वो वारिस बन जाता, इसी तरह उस मरने वाले की बीवी के ऊपर एक कपड़ा डाल देते। वो जिसका कपड़ा डल जाता वो उसको उसका वारिस समझा जाता। अब वो उसके नफे नुकसान का मालिक होता, वो उससे शादी करे, वो उसको शादी से रोके, कोई भी मामला करे वो ऐसे ही करता। बाज दफा ऐसा काम करने वाला मरने वाले का अपना बेटा भी होता था, और लिहाजा लोग जो थे वो अपनी सौतेली माओं से भी शादी कर लेते थे। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने इन आयतों में मना किया कि देखो माल एक बेहिस और महकूम चीज है, जबकि औरत एक जज्बात रखने वाली और एक जिंदा और आजाद हस्ती है। वो मुआशरे जो इस्लाम आने के बावजूद भी औरत को एक बेख्तियार चीज की तरह, एक पोटली की तरह इधर से उठा के उधर और उधर से उठा के इधर रखने लगते हैं, वो जुल्म करते हैं। आज वो औरत ना बोल सके लेकिन कल उसका रब बोलेगा उसकी तरफ से। आज वो औरत बोलेगी तो कम हक लेगी, लेकिन कल जब रब उनकी तरफ से बोलेगा तो तुम हो सकता है कि सारी जिंदगी की नेकियां दे के भी उसका कफारा ना अदा कर सको। लिहाजा इंसानी जज्बात की कदर करो। ये नहीं कि इंसान को तुम मादा समझ लो और इस तरह की चीजें लेके आओ। फिर उसके बाद दूसरा असूल बड़ा ही खूबसूरत था इसमें, शोहर और बीवी के मामले में। बस दफा जब जिंदगी में एक दूसरे से वास्ता पड़ता है तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक दूसरे की कोई बात अच्छी नहीं लगती, और हम में से हर इंसान इंसान है, और इंसान का मतलब ही क्या है कि वो खामी और खूबियों का मजमू है। अगर कोई ये कह दे कि मेरे अंदर हर खूबी है और दूसरे के अंदर हर कोताही है तो दुनिया में इससे बड़ा फिर शायद झूठ कोई नहीं होगा शिर्क के बाद। लिहाजा शोहर और बीवी के मामले में कामयाब रवैया क्या है कि दूसरे की खूबियों पे निगाह रखी जाए और अपनी खामियों पे निगाह रखी जाए। कभी किसी की बात पसंद ना आए तो फौरन सोच लो कि मेरी भी तो कितनी ही बातें हैं जो उसको पसंद नहीं आती होंगी, और इस बात को अल्लाह की मिसाल से समझा जा सकता है। हम अल्लाह सुबहान तआला से क्या कुछ नहीं लेते, इसके बदले में हमारे रवैये क्या होते हैं? तो क्या मेरा रब जो मुझे मेरे गुनाहों के बावजूद दे रहा है तो क्या मैं किसी को बर्दाश्त नहीं करूंगी? क्या मेरा मामला इंसानों के साथ ऐसा होगा? देखा जाए तो ये मामला यहाँ शोहर और बीवी का है, लेकिन हकीकत में हर इंसान का दूसरे के साथ यही मामला है। खुशगवार दिलों में कभी कभी रंजिशें भी आने लगती हैं, मोहब्बत भरे दिलों में बुग़्ज़ और हसद भी आने लगता है, कभी कभी दिलों में मैल भी आने लगता है। कोई बात नहीं, इंसान है, बस इस मैल को धो दो। चलते चलते पाँव पे मट्टी पड़ती है, बस आगे जाएंगे मट्टी झड़ जाएगी, उसको धो लो। रंजिशों को दिलों में लेके ना बैठो, ये दिल अल्लाह की मोहब्बत का मुकाम है। और जिस दिल में इंसानों के बारे में गलत फहमलियां आने लगती हैं, और अपने करीब रहने वालों के साथ जब इंसान ऐसे मामला रखता है, तो याद रखिए वहां से अल्लाह का नूर छिन जाता है, फिर अल्लाह की रहमत से इंसान छिन जाता है, फिर नमाज पढ़ के भी इंसान का दिल अल्लाह से नहीं जुड़ता, फिर कुरान पढ़ के भी दिल नहीं खुलता। अगर हम चाहते हैं कि हमारे दिल खुल जाए इस कुरान के सफर में, तो यहाँ बैठे बैठे एक नीयत कीजिए कि मैंने हर एक को माफ किया जिसने मुझे दुखाया और जिसको मैंने दुखाया, ए अल्लाह वो मुझे माफ कर दे। दुआएं मांगे, जिनको जिनको आपने दुखाया उनके लिए आप दुआ करें, और जिन्होंने आपको दुखाया उनके लिए आप अल्लाह से दुआ करें। बंदे मोमिन का दिल शीशे की तरह होता है। यहाँ कितना खूबसूरत असूल है, जो हो चुका हो चुका, इल्ला मा कद सलफ, हो गया मट्टी डालो, जो था खत्म हो गई बात। अब तुम्हें बीवी पसंद नहीं रही, उसकी कोई अच्छी बात देख लो, चलो अब छोड़ चुके हो तो अब अगली बीवी मिल जाएगी, तो फिर उसके साथ निभा करो, लेकिन दिल तो साफ रखो। और ये असूल हैं वो जो जिंदगी के अंदर खुशियां लाते हैं। और ऐसे ही लोग फिर बाज दफा क्या करने लगते हैं कि अच्छे दिनों की यादें भी छीनने लगते हैं। शौहर बीवी का ताल्लुक अच्छा होता है तो खूब देते हैं, बाज दफा वो भी देने लगते हैं जो नहीं देना होता, और जब ताल्लुक खराब हुआ तो फिर कहते हैं वो भी दो, शादी पे जो जोड़े दिए थे वो भी दो, और जो जेवरात थे वो भी दो, और वो जो तुम्हारी माँ को चीज मिली थी वो भी दो। ये जुल्म है। अल्लाह ताला इंसान को आला जर्फ बनाना चाहता है। अल्लाह ताला तो कभी नहीं कहता कि तुमने कुफर किया, वापस करो मेरी नेमतें, वापिस करो जो मेरा पानी पी चुके हो, मेरी हवा वापिस करो। तो इंसान इंसानों के साथ ऐसा मामला क्यों करता है? अल्लाह ताला हमें यही सिखाना चाहता है कि देखो इस दुनिया में तुम अलग नहीं रह सकते, इंसानी जिंदगी जो है अलग थलग नहीं रहती, साथ रहोगे लेकिन तबीयतें फर्क हैं, इसी तरह बर्दाश्त करो। शिकायतों के अंदर अपने आप को खुशगवार रखो। आपके घर पुरसकून हो सकते हैं अगर आपने इस असूल पे अमल किया, आपके इदारे पुरसकून हो सकते हैं अगर आपने लोगों के साथ इस तरह तआवुन किया, आपका मुल्क आपकी हुकूमत पुरसकून हो सकती है अगर आवाम और रियाया का ताल्लुक इस बुनियाद पे आ जाए, हमारे दीनी इदारों में सुकून हो सकता है अगर इसी असूल को अपना लें। और वो क्या कि मैंने जिससे कोई बात दिल में महसूस की है, कोई बात नहीं वो भी इंसान है, हो सकता है बात का रुख दूसरा ही हो, और कई दफा देखा गया कि हम तो कसूर दूसरों का समझते रहे और कसूर अपना निकल आया। अल्लाह हमें हमारी तरफ देखने वाला बना दे। यहाँ पे पारे को खत्म करूंगी इसलिए कि जो आखिरी आयतें हैं उनका ताल्लुक और उनका टॉपिक अगली आयतों से है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस पारे की तमाम अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक दे, और जिन बातों से रुकने का हुक्म दिया अल्लाह ताला हमें उससे रुकने वाला बना दे, और ऐसा ना हो कि हम पढ़ के भी अनपढ़ों वाला रवैया अख्तियार करें। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जत यम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।